कुछ ऐसी चीजें हमारे जीवन में घटित हो जाती हैं जो हम नहीं चाहते हैं, जिनको हम फिर चाह करके भी बदल नहीं पाते हैं, पर हम एक विचार करते हैं कि क्या करूं, मैंने ऐसा कर लिया है। जैसे किसी को हम कभी कोई कड़ी बात कह देते हैं, बात को मन छटपटाता है, तो फिर उपाय क्या है? उपाय यही है कि उसके पास जाके उससे कहें कि वो जो सुबह मैंने आपसे कड़ी बात कही थी उसके लिए क्षमा कर देना। यही प्रक्रिया तो है कर्मों को अपने से अलग करने की। जो कर्म अज्ञानतावश हमने अपने भीतर संचित कर लिए हैं उनको कैसे हटाएं, तो इसी तरह की आगे ऐसे कर्म करें जिससे कि नए कर्म भी ना आवे और पुराने भी हटते चले जावे। और फिर इतना ही नहीं, हमने यह भी विचार कल बैठ करके किया था कि यह जो लोक हमें दिखाई पड़ता है जिसमें हम निरंतर भ्रमण करते हैं, वो लोक हमें भ्रमण करवाता हो ऐसा नहीं है, यह कि इस लोक का कोई सर्वो सर्वा हो जो इस लोक को मैनेज करता हो, कोई रेगुलेटर हो जो रूल्स यहां बनाता हो, ऐसा भी नहीं है। रूल्स आर रेगुलेटेड ऑन सेल्फ। यहां जो भी प्रकृति के नियम हैं वे अपने आप रेगुलेट होते हैं, उनके लिए कोई रेगुलेट करने वाला ऊपर ईश्वर नाम का व्यक्ति विशेष कोई भी नहीं है। यहां मैं खुद ही अपने जीवन को बनाता हूं, बिगाड़ता हूं और हमेशा बरकरार रखता हूं। यहां जितने भी क्षय द्रव्य हैं वे निरंतर चेंज भी होते रहते हैं लेकिन बने भी रहते हैं, उनकी पर्यायें बदलती हैं लेकिन द्रव्य हमेशा शाश्वत रहता है। ऐसे क्षय द्रव्यों से मिलके ये लोक बना है। इस सृष्टि को किसी और ने ना बनाया है, ना कोई इसे धारण करता है, ना कोई इसे मिटा सकता है। ये कॉन्सेप्ट हमने कल इस पर विचार किया था। और इससे होता क्या है, इससे ऐसा नहीं समझना कि भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा में कमी आ जाएगी। ऐसा लगने लगता है कि अरे वाह, आपने तो भगवान को ही नकार दिया। नहीं, हमने भगवान की भगवत्ता को नहीं नकारा है, हमने भगवान के कर्ता धर्तापने को नकार करके अपने स्वयं के कर्तापने को भी नकार दिया। संसार में न कोई ईश्वर करता है, न हम स्वयं भी कर्ता धर्ता हैं, ये तो हमारा भ्रम है। निमित्त मात्रम भव सव्य साची। श्री कृष्ण को भी गीता में अर्जुन के लिए उपदेश देते हुए कहलवाया गया है कि निमित्त मात्रम भव सव्य साची, तुम निमित्त मात्र हो। यहां वस्तु का वर्णन स्वाभाविक रूप से उसकी योग्यता के अनुसार होता है, हम निमित्त बन जाते हैं। जब हमारे मन का होता है तो अहंकार करते हैं कि मैंने करा, और जब मन का नहीं होता है तो संक्लेश करते हैं और इसी से हम लोक में भ्रमण करते हैं। यही हमारी अज्ञानता कि कोई यहां पर करता है या कि मैं प्रभावों का करता हूं, ये जो अज्ञानता है और इसी से बढ़ने वाली अज्ञानता से होने वाली जो आसक्ति है, वही मेरे संसार का कारण है, वही लोक में मुझे भटकाती है। इसलिए मुझे इस लोक में अब भटकना नहीं है, मुझे तो इन अज्ञानता को हटा करके लोक के अग्रभाग पर स्थित होना है, जो कि मेरा अपना स्वयं का है, स्थान है, मेरी अपनी स्वाभाविक स्थिति है, मुझे उसे प्राप्त करना है। मेरे अंदर हृदय की इतनी विशालता आ जाए कि मैं तो ये सोचता हूं कि कोई ईश्वर नाम की चीज ऊपर बैठी है, नहीं, वो मेरे भीतर ही है, वो हर व्यक्ति के भीतर बैठी है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ती। जब तक दिखाई नहीं पड़ती तब तक और दूसरी चीजें दिखाई पड़ती हैं। विनोबा की मां एक अनाथ बच्चे को भोजन बना करके गरम गरम खिलाती थी, विनोबा को ठंडा भोजन खिला देती थी। विनोबा ने एक बार कहा कि मां, तुम कहती तो हो कि सबके भीतर भगवान है, कण कण में भगवान है, लेकिन तुम्हारे अंदर भी पक्षपात क्या नहीं है? तुम उस पराए बेटे को तो गरम गरम खिलाती हो और मुझे, तुम्हारा बेटा मैं, मुझे ठंडी खिला देती हूं। बोली, यही तो है, यही तो मेरा अपना अभी अज्ञान है बेटे, मुझे उस पराए बेटे में तो ईश्वर दिखाई पड़ता है, सो उसकी खूब अच्छे से सेवा करती हूं। तेरे अंदर भी जिस दिन मुझे बेटे के स्थान पर ईश्वर दिखने लगेगा, उस दिन तेरे लिए भी गरम गरम खिलाऊंगी, अभी तो बेटा दिखाई पड़ता है। ये जितना भी राग द्वेष है वो भी दूर हो जाए अगर हम इस तरह का विचार कर ले, सबके भीतर है, सबके भीतर वो सामर्थ्य है अपने परम पद को पाने की। ईश्वर में लीन होने के मायने अपने आप में लीन होना है, ईश्वर को पाने के मायने अपने आप के आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पाना है। ये कॉन्सेप्ट लोक भावना में हमने कल इस चीज को समझा,